हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। जोया लिफ्ट के थ्रू ग्राउंड फ्लोर पर चली गई थी और तब तक अक्रम ने कुछ काम करने वाले लोगों को भी पार्क में जाने के लिए बोल दिया था। जोया खुशी खुशी आगे बढ़ रही थी। आज बड़े दिन बाद जोया इतना खुश हुई थी, वरना उसकी जिंदगी तो जैसे दुख का दूसरा नाम बन गई थी। जोया की जिंदगी का अतीत जितना भयानक और दर्द भरा था शायद ही किसी का रहा होगा। अब जोया खुश रहने की दिखने की पूरी तरह से कोशिश करती थी, लेकिन उसका जख्म भरा नहीं था। वो तो केवल तभी भर सकता था जब उसके गुनहगारों को मौत से भी बदतर सजा मिलेगी। वेल, जोया ने अभी के लिए अपने जख्मों के साथ समझौता कर लिया था, क्योंकि अगर वो दुखी रहेगी तो उसका नया परिवार अक्रम और रिया भी दुखी रहेंगे। उसकी जिंदगी में केवल रिश्ते नाते के नाम पर केवल अब यही दो लोग बचे थे जिन्हें जोया किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। इन दोनों से उसका दूर दूर तक खून का रिश्ता नहीं था, था तो केवल दिल का रिश्ता जो जोया ने अक्रम और रिया को दिल से अपना कर बनाया था। वेल, इन्हीं सब सोचों में गुम जोया बिल्डिंग के शानदार पार्क में पहुंच चुकी थी, और ये पार्क जितना जोया की खिड़की से खूबसूरत लग रहा था उससे कहीं ज्यादा ये पास से खूबसूरत लग रहा था। जोया वहाँ की खूबसूरती में इतना खो गई कि सब कुछ भूल कर गोल गोल घूमने लगी थी, और घूमते घूमते अचानक उसकी नज़र चार लोगों पर पड़ी जो उसे ही देख रहे थे। जोया थोड़ा सा नर्वस हो गई थी, और जोया के नर्वस होते ही वो लोग हंसने लगे, और तभी एक आदमी उसके पास आया और बोला, मैडम आप बेहद खूबसूरत हैं। जोया को अपनी तारीफ सुनकर उसके गाल लाल हो गए और बाकी के तीन लोग भी कुछ बोलने लगे, लेकिन जोया उनकी बात नहीं समझ पाई। तब वो पहला लड़का बोला, मैडम ये भी वही कह रहे हैं जो अभी मैंने बोला था। जोया आपको तो इतनी अच्छी हिंदी आती है, फिर ये लोग हिंदी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। तब उस लड़के ने कहा, वो क्या है ना मैडम, मैं हैदराबाद से हूँ, पैसे कमाने के चक्कर में अमेरिका आया और यहीं का होकर रह गया, और मैं अपनी मातृभाषा के साथ साथ अमेरिकी भाषा भी अच्छे से बोल और समझ सकता हूँ। आप फिक्र न करें, आपकी सारी बात इन्हें और इनकी सारी बात आपको मैं समझा दूंगा। अब आप बताइए हमें क्या क्या करना है। जोया उस लड़के की बात सुनकर मुस्कुराने लगी और अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोली, हाय मेरा नाम जोया है। तब उस लड़ने ने कहा, मेरा नाम जॉन है, और उनमें से एक का नाम हेनरी और दूसरे का नाम जैक और एक डैनियल था। सभी ने गर्म जोशी के साथ जोया के साथ हैंडशेक किया, और उनमें से एक की आंखों में तो आंसू खा गए। जोया जैक को रोता देखकर हैरान हो गई और जॉन से पूछने लगी कि ये क्यों रो रहा है। जॉन ने जोया का सवाल जैक के सामने रिपीट किया, और जैक ने रोते हुए अपनी भाषा में उसे जवाब दिया। उसकी बात सुनकर जॉन भी एक बार को चुप हो गया। तब जोया ने जॉन से पूछा, क्या हुआ, क्या बताया इसने, क्यों रो रहा है ये। तब जॉन ने कहा, वो एक्चुअली जोया मैडम, जैक कह रहा है कि इस बिल्डिंग में काम करते हुए उन्हें पूरे 7 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी उनसे इतने प्यार से बात नहीं की और ना ही इतना मान सम्मान दिया। जोया उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, तुम सब फिक्र मत करो, तुम लोग आज से मेरे बहुत अच्छे वाले दोस्त हो, तो क्या कहते हो इसी बात पर काम शुरू करें। जोया को बात जॉन ने बाकी तीनों को भी समझा दी और वो सब भी मुस्कुराने लगे। जोया ने हल्दी के फंक्शन का केंद्र पार्क के बिल्कुल बीचों बीच रखा था, और वो लोग जोरों शोरों से उस खूबसूरत पार्क को और खूबसूरत बनाने में जुट गए। जोया ने हैप्पी हल्दी का बड़ा ही खूबसूरत लोगो बनवाया था जो वहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था, और लगभग 3 घंटे की कड़ी मेहनत करके उन्होंने उस पार्क को दुल्हन से भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया था। सारा काम होने के बाद जोया ने अपने नए दोस्तों को भी हल्दी के फंक्शन में इनवाइट किया और खुद भी तैयार होने के लिए अपने फ्लैट की ओर चल दी। वहीं दूसरी ओर अबीर राठौर पागल सा हुआ जा रहा था। अचानक से जोया न जाने कहाँ गायब हो चुकी थी। उसने और उसके आदमियों ने मिलकर पूरा का पूरा शहर छान मारा था। इतना ही नहीं, उन्होंने हर एक इंडियन शादी में भी जा जाकर खोजबीन की थी, लेकिन उन्हें कहीं कुछ पता नहीं चल पाया था। ऐसा पहली बार हुआ था कि अबीर पूरे दिन से बिना कुछ खाए पिए था। अबीर का परिवार के नाम पर केवल उसकी सौतेली माँ थी, सो अबीर दिन भर क्या करता है, क्या खाता पीता है, किसी को उससे कोई मतलब नहीं था। अबीर को सौतेली माँ उसके साथ नहीं रहती थी। अबीर ने उसके लिए अलग से एक घर खरीद कर दे रखा था, जहाँ उसकी जरूरतों का सब सामान मौजूद था। अबीर केवल महीने दो महीने में उससे मिलने जाता था, क्योंकि उसके बाबा को ये आखिरी ख्वाहिश थी कि उनके मरने के बाद वो उसका ध्यान रखे। उसकी सौतेली माँ से अबीर को कभी भी कोई प्यार या मान नहीं मिला था। उसे तो केवल अपने ऐशो आराम से मतलब था। अबीर को आज रह रहकर अपनी मरी हुई माँ की याद आ रही थी। जिंदगी में पहली बार उसे मोहब्बत हुई थी, लेकिन अब तो वो भी उससे कोसों दूर थी। अबीर को समझ नहीं आ रहा था वो जोया को कहाँ से ढूंढ कर लाए। वहीं दूसरी ओर मेहर के साथ एक बार फिर अपनी मनमानी करने के बाद राजवीर मेहर के द्वारा लाई गई कॉफी का मग हाथ में थामकर अपने अंकल शमशेर सिंह के काम के बारे में सोचे जा रहा था, क्योंकि उसके पास केवल 3 दिन थे अनुराधा की डिटेल्स पता करने के लिए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अपने सबसे वफादार आदमी सुधाकर जी को फोन लगा दिया। दूसरी ओर सुधाकर जी अपने बैंक में बैठकर एसी की ठंडी हवा खा रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपने फोन की स्क्रीन पर राजवीर सिंघानिया का नाम देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गए, क्योंकि एक टाइम था जब वो राजवीर के लिए अपनी जान देने को भी तैयार था। लेकिन उसकी फुटेज लीक होने के बाद से उसे नफरत सी हो गई थी राजवीर सिंघानिया से। एक बार फोन पूरी रिंग जाकर बंद हो चुका था, तभी एक बार फिर से फोन बजने लगा था। सुधाकर जी ने सोचा एक बार इससे बात कर ली जाए, आखिर पता तो लगे ये साहब आज फोन क्यों कर रहे हैं। सुधाकर जी ने फोन उठा लिया और बोला, हेलो राजवीर साहब। दूसरी ओर राजवीर को सुधाकर की आवाज़ सुनकर हैरानी हुई, क्योंकि आज तक सुधाकर ने उसका नाम नहीं लिया था और आज वो सीधा उसका नाम ले रहा था। तब राजवीर अपना गुस्सा पीते हुए बोला, हेलो सुधाकर, कैसे हो तुम। सुधाकर ने जवाब दिया, हम ठीक है राजवीर साहब, आप बताइए किस लिए फोन किया है। सुधाकर ने बड़े ही रूडली बोला था, जिससे राजवीर काफी ज्यादा तप चुका था। लेकिन राजवीर जोश में होश खोने वाला आदमी नहीं था। वो अच्छे से जानता था उसे कब किस टाइम पर कैसा रिएक्ट करना था। उसने थोड़ा मीठा होते हुए बोला, सुधाकर जी आप तो जानते हैं अभी पिछले दिनों मेरे साथ क्या हुआ है। उस औरत ने मुझे फंसाया था, मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और उसके बाद उसने मेरी टिप मीडिया को दे दी थी और मीडिया ने मेरी न्यूड फोटो वायरल कर दी थी। आप तो जानते हैं हम जिस पेशे में हैं वहाँ ये सब स्कैंडल आम बात है। सो प्लीज सुधाकर मेरी मदद करो, मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है। सुधाकर धीरे धीरे उसकी बातों में आ रहा था और बोला, पर साहब हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तब राजवीर मुस्कुराने लगा, क्योंकि वो समझ गया था कि सुधाकर उसकी बातों में आ चुका था। तब राजवीर ने उसे अनुराधा सेठी की पूरी डिटेल्स निकालने को कहा,
जिसे सुनकर पहले तो सुधाकर सोच में पड़ गया और फिर बोला, ओके सर, हम कल इसी टाइम आपको फोन करके अनुराधा को पूरी जानकारी दे देंगे। ये सुनते ही राजवीर के सिर से एक बोझ सा उतर गया था और वो अपने आप को काफी हल्का फुल्का महसूस करने लगा था। वहीं दूसरी ओर अरहम धीरे धीरे बोलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जोया के मिलने की खबर किसी दवाई से भी ज्यादा अरहम को ठीक होने में मदद कर रही थी। धीरे धीरे अरहम के जिस्म में जान पड़नी शुरू हो चुकी थी और वो अपने आप से अपना एक हाथ और पांव हिलाने लगा था। जहां उसने जीने की पूरी उम्मीद छोड़ दी थी, वहीं जोया के मिलने की खबर ने उसमें एक बार फिर जीने की उम्मीद जगा दी थी। वो बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने का मौका जो मिल रहा था। वहीं अरमान दिन रात अपने काम में डूब चुका था। अमेरिका जाने से पहले वो अपना सारा काम खत्म कर लेना चाहता था। जितनी भी मीटिंग थी वो सब उसने बैक टू बैक रख ली थी। अपना काम पूरा करने का उसके सर पर एक जुनून सा सवार हो गया था, क्योंकि उसके भाई ने उसे इसी बात को लेके समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त उसने उसकी एक नहीं सुनी थी, उल्टा उस पर हाथ उठाकर उसे कोमा में और भेज दिया था। अरमान के हर हाल में 3 दिनों के अंदर अंदर अपना काम पूरा खत्म करना था और उसके बाद वो अपना बाकी का काम फोन के थ्रू कंटिन्यू करने वाला था। ठीक 3 दिन के बाद अरमान अमेरिका जाने वाला था, वो भी अपने प्राइवेट जेट के साथ। अमेरिका जोया हल्दी के फंक्शन की सारी तैयारी करने के बाद ऊपर फ्लैट में आ गई थी और उसने देखा रिया ने दो बहुत खूबसूरत पीले रंग के लहंगे निकाल रखे थे। जोया उसके पास गई और बोली, ये क्या रिया, ये दो दो लहंगे? जहाँ तक मुझे याद है हमने तो एक ही येलो लहंगा खरीदा था, फिर ये दूसरा कहाँ से आया? रिया ने कहा, शायद आप भूल रही हैं जोया दी, आपके भाई की हल्दी है, तो आपको क्या लगा आप ऐसे ही नॉर्मल कपड़े पहन कर आएंगी? कभी भी नहीं। मुझे पता था आप अपने लिए लहंगा नहीं लेने वाली थीं, इसलिए मैंने आपके लिए ये लहंगा खरीद लिया था। और ये देखिए, इसके साथ की मैचिंग ज्वेलरी भी, आज आप यही पहनेंगी। बस, ज़ोया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रिया बीच में ही बोल पड़ी, बस बस, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, मैंने कहा ना, आप यही लहंगा पहनेंगी, बस। और ज़ोया दी, आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है रिश्तेदार के नाम पर, मेरा कोई है तो वो आप हैं, मेरी बड़ी बहन बनकर आप मेरी ज़िंदगी में आई हैं, और आज आपकी ही वजह से मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर गई है, आज मेरे पास जो भी कुछ है सिर्फ आपकी वजह से। ऐसा कहकर रिया ज़ोया के गले लग गई और उन दोनों की आंखों से आंसू बह निकले थे। प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड शेयर। थैंक यू।